मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। आज 15 सितंबर 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 6 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की 22 अक्टूबर से होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं गौतम कुमार गुप्ता सासाराम बिहार से, विनायक शशिकांत तावड़े सोलापुर महाराष्ट्र से, राणा सोनू सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, सुरभि कानपुर उत्तर प्रदेश से, विवेक वर्धन पूर्णिया बिहार से और सरस्वती कल्याणी दरभंगा बिहार से। तो गौतम, विनायक, राणा, सुरभि, विवेक और सरस्वती आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, जानते ही हैं, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे कुछ सूचनाएं आप लोगों को देनी होती हैं, बावजूद इसके कि आप में से जो पुराने श्रोता हैं वो इन सूचनाओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, फिर भी नए श्रोताओं के लिए ये जरूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सैटरडे और संडे को शेड्यूल कुछ दूसरा होता है। सैटरडे और संडे को डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन सैटरडे को आपको प्रेस क्लिपिंग्स एज इट इज मिलेंगी और साथ ही साथ प्रेस क्लिपिंग के योजना और कुरुक्षेत्र के आपको टोटल 4 आर्टिकल, 2 योजना के 2 कुरुक्षेत्र के मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों के आर्टिकल शामिल होंगे। और फ्रेंड्स, एक आपको वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, साप्ताहिक प्रश्न जो मेंस के पैटर्न पर होता है, वह आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। और फिर हमारे जो क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस दिया जाता है। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा विषय को लेकर, और विषय आज मैंने थोड़े से अलग एंगल से लिया है। फ्रेंड्स, भारत और जापान के बारे में आपने न्यूज में बहुत ही विस्तार से सुना है, दूरदर्शन न्यूज पर भी है और आज के अखबारों में भी काफी कुछ लिखा गया है, राइट? मैं चाहता तो इसे रिपीट कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस संदर्भ को लेकर, यानी कि भारत और जापान के संबंधों की पृष्ठभूमि को लेकर यह बात करनी चाहिए कि इनफैक्ट जब इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो सिविल सर्विस की परीक्षा की तैयारी के लिए आप इसका उपयोग कैसे करेंगे। यानी कि ये जो घटना है भारत और जापान के संबंधों की, तो सिविल सर्विस के लिए आप इसे कैसे अपने उपयोग में लाएंगे। तो मित्रों, आप ये कह लीजिए कि आज का जो हमारा विषय है वो है भारत जापान संबंधों के बहाने परीक्षा की तैयारी। इस विषय पर हम लोग बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले कि इस पर बातें करें, आइए कुछ जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं थोड़ा सा उन पर नजर डाल लेते हैं। मित्रों, इस बारे में मैं 2-3 केवल महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूंगा जो न्यूज से सीधे रिलेटेड नहीं है, यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की न्यूज से संबंधित नहीं है। अखबारों में इसके बारे में लिखा गया है और न्यूज में भी वो बातें आई हैं। ऐसा नहीं कि मैं कोई बहुत नई चीज लेकर के आ रहा हूं या अखबार वालों ने कोई बिल्कुल ही नई चीज लिख दी है, लेकिन जो एग्जाम होते हैं, एग्जाम में कहां से चीजें आती हैं, कैसे पूछी जाती हैं, क्यों पूछी जाती हैं, शायद इसके माध्यम से आपको इस बात का अनुमान लग सके जो लगना ही चाहिए। इसकी समझ स्टूडेंट में मुझे लगता है, खासकर अगर कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है तो होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, जापान के प्रधानमंत्री आए हुए हैं और आपने सुना है कि जो प्रधानमंत्री हैं, एक तो शिंजो अबे नाम है उनका, अबे आबे दोनों शब्द आपको पढ़ने को मिलते होंगे, नाम तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा, याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने एक स्थान सुना होगा कि अहमदाबाद के पुराने शहर में एक मस्जिद है जो सीदी सैयद के नाम से जानी जाती है, सीदी सैयद। अब ये मस्जिद है, राइट? हो सकता है कि सिविल सर्विस में प्री में, मतलब ऐसी संभावनाएं प्री में ही पूछे जाने की होती है ऐसे प्रश्नों की, तो इसके बारे में पूछ लिया जाए। अब आप देखिए कि जब सीदी सैयद के बारे में पूछा जाएगा तो स्टूडेंट को लगेगा कि यह तो बहुत ही कठिन प्रश्न है, और नो डाउट कठिन प्रश्न ये है, बहुत कठिन प्रश्न है। इतिहास में इतनी सारी चीजों का निर्माण हुआ है प्राचीन काल से लेकर के और वर्तमान काल तक, तो आप कितनों के नाम याद रखेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादातर तो यही होता है फ्रेंड्स कि उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन करेंट अफेयर से होता है। अब ये बात अलग है कि असावधानी के कारण हमसे वो मिस हो गया है, और देखिए कुछ तो मिस हो भी जाते हैं, तो उतना मान करके चले कि कुछ मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर मिस न हो, सारे मिस न हो, बस इसका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो जो सीदी सैयद जो मस्जिद है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कि ये 16वीं सदी की मस्जिद है, अहमदाबाद के पुराने शहर में है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मस्जिद है ये अपनी जालीदार खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जो सबसे बड़ी प्रसिद्धि है, इसकी जो खिड़कियां हैं वो बहुत ही महीन जालीदार खिड़कियां हैं, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। किसने बनाया, चूंकि बनाने वाले शासक इतने बहुत प्रसिद्ध नहीं रहे हैं, तो आप उसे मिस भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। मित्रों, जो दूसरी बड़ी खबर है, और एक ये ऐसी खबर है जो लंबे समय तक, यानी लगभग एक साल तक तो आपके काम की है। एक साल तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक साल के बाद इसकी जगह पर फिर इसी को रिप्लेस करने के लिए इसी से संबंधित दूसरी खबर आ जाएगी, और ये डेटा से संबंधित, आंकड़े से संबंधित है। और आंकड़ा ये है फ्रेंड्स कि अभी एक जारी किया गया है, एक आंकड़ा विश्व आर्थिक मंच ने इसे जारी किया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, ये आंकड़ा इसने जारी किया है, ये फोरम जिनेवा में है। इस तरह के क्वेश्चन सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता रहा हूं। उसने एक आंकड़ा जारी किया है, और उस आंकड़े के अनुसार ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, हिंदी में हम इसे कहेंगे वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक, 130 देशों की लिस्ट है, उसमें मित्रों भारत का स्थान 103 है, 103 है। पिछली बार जब जारी किया गया था तो उसमें भारत का स्थान 105 था, तो थोड़ा सा हम ऊपर आए हैं, लेकिन ये कोई बहुत सच पूछे तो संतोष करने की बात नहीं है। संतोष करने की बात इसलिए नहीं है फ्रेंड्स कि जो भारत है, आप देख रहे हैं कि कितनी तेजी के साथ आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है। उसका जो है जीडीपी, जो एनुअल ग्रोथ रेट है, 6% से लेकर के 8% तक का हम दावा करते हैं, कम से कम में भी हम मान करके चलते हैं कि 6%, तो इस हिसाब से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, जो मानव ह्यूमन कैपिटल सूचकांक है, इसका मतलब है कि जो हमारे यहां की जो श्रम शक्ति है, यानी कि जो मनुष्य है, उसके माध्यम से हम कैपिटल जो जनरेट कर रहे हैं, यानी कि ये कह लीजिए कि उनके जो कार्य करने की क्षमता है, उनका जो कौशल है, इससे आप जोड़ करके देख सकते हैं, वह बहुत बेहतर नहीं है, यही हम मान करके चलेंगे ना। उसमें हम 103वें पर है, जबकि जो चाइना है, चाइना से तो हम अपने हर चीज की तुलना करते ही हैं, उसकी स्थिति हमसे काफी अच्छी, उसका स्थान 34वां है, 34th, तो हमसे बहुत अच्छी स्थिति में चाइना है, और हम 103वें स्थिति में हैं। तो मित्रों, ये आंकड़ा आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और इसी समय एक और आंकड़ा आया है, मैं समझता हूं कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आंकड़े तैयार किए जाते हैं ना, इस तरह के जो इंडेक्स तैयार किए जाते हैं, तो इसमें कुछ चीजों को लिया जाता है कि वहां कितनी श्रम शक्ति है, उनमें दक्षता कितनी है, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, लिटरेसी कितनी है, इस तरह से कई चीजों को लेकर के वो चलते हैं, और फिर उसके विश्लेषण के माध्यम से फिर वो एक इंडेक्स तैयार करते हैं। एक और दूसरा आंकड़ा है फ्रेंड्स, ये भी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए, कि यह माना जाता है कि भारत की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें जो महिलाओं का योगदान है वो 17% है, 17%, जबकि वर्ल्ड, अगर हम इंडेक्स वर्ल्ड आंकड़े को देखें, तो वर्ल्ड, अगर विश्व के जीडीपी को लें, तो उसमें जो महिलाओं का योगदान है वो 37% है, मतलब पूरे विश्व में 37%, उसमें भारत केवल 17%, 17% है। और वैसे भी अगर हम आबादी में लेकर के चलें, तो चलिए 50-50% की आबादी तो नहीं है, हम मान लेते हैं 45 और 55 की है, 45% महिलाएं हैं, 55% पुरुष हैं, क्योंकि हमारे यहां जो लिंग अनुपात है वो बराबर बराबर का नहीं है। तो अगर हम ये मानते हैं कि 45% आबादी महिलाओं की है कुल आबादी में, तो उनका कंट्रीब्यूशन देखिए कि 17% है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये काफी पुअर है, हम इसे बहुत संतोषजनक नहीं मान सकते। यानी कि महिलाओं को जी आर्थिक क्षेत्रों में आगे लाए जाने की बहुत अधिक आवश्यकता भारत में है। तो मित्रों, ये दो मुख्य बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर कि भारत और जापान के बहाने हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मित्रों, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि बहुत महत्वपूर्ण जो संगठन है, राष्ट्र हैं, उनके बारे में, उनसे जो हमारे रिलेशंस हैं, हमें जानना चाहिए। पहली बात तो जापान उसमें एक प्रमुख राष्ट्र है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र तो नहीं है लेकिन काफी करीबी राष्ट्र जरूर है, ठीक है। दूसरा, आप देखेंगे कि हमारे सिलेबस में सिक्योरिटी को लेकर के मेंशन किया हुआ है और जो अनसॉल्व्ड पेपर है उसमें भी सिक्योरिटी की बात आती है, चाहे वो हमारी भूमि सीमा की सुरक्षा हो, चाहे वो हमारी समुद्री सुरक्षा हो, चाहे यहां तक कि आकाशीय सुरक्षा ही क्यों न हो, राइट। तो अब आप देखिए कि जब हम समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं तो न्यूज में आपने सुना भी होगा, रेडियो न्यूज में, कि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जो भारत और जापान की जो दोस्ती है, जो मिलन है, ये बेसिकली हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का मिलन है। जापान देखिए कि आपको प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में है और भारत जो है ना वो हिंद महासागर में है। तो भारत और जापान का जो मिलन है वो इन दो महासागरों का मिलन है। मित्रों, इस बीच में आप ये भी देख रहे हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कि चाइना धीरे धीरे अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए वन बेल्ट वन रोड पर तो काम कर ही रहा है, साथ ही समुद्री क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व बढ़ाता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए बहुत जरूरी है कि वह दूसरे राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत ऐसा कर भी रहा है, राइट। अब आप देखें कि दोस्तों, यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जापान और भारत के संबंधों को लेकर है, परीक्षा की दृष्टि से 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो एक लंबी लिस्ट है आपके सामने। धर्म संकट ये हो सकता है कि अब क्या हम इन पूरी की पूरी लिस्ट को याद कर लें, या फिर इसमें से हम देखें कि परीक्षा के लिहाज से कौन सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यह आपको जानना होगा। तो जब हम परीक्षा के लिहाज से कौन सा महत्वपूर्ण है इसको छांटने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या होंगे, ये जानने के आधार क्या होंगे। देखिए, जानने के आधार, फिर से हम अनसॉल्व्ड पेपर पर आएंगे और पूरे के पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो पर जाएंगे और हमारी वर्तमान आवश्यकताओं पर जाएंगे। तो ठीक है, सिलेबस में तो ऑलरेडी सुरक्षा की बात कही गई है, न्यूज में भी आप देखिए कि जो हाईलाइट किया जा रहा है, अगर आपने दूरदर्शन न्यूज सुनी हो, रेडियो न्यूज में भी जो हाईलाइट किया जा रहा है, आप देखिए कि दो तीन चीजों पर ज्यादा हाईलाइट किया गया है। एक तो आतंकवाद के खिलाफ, जापान और भारत दोनों ने ही मिलकर के जो भारत पर जो भारत के बंबई में हमला हुआ था, फिर रावलपिंडी में जो हुआ उसकी तीखी आलोचना की है। तो वो आलोचना सीधी सी बात है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी गतिविधियां उन्हीं के विरोध में है और वैश्विक आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की गई। तो आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या केवल भारत की ही नहीं है बल्कि दुनिया की है। दूसरा, हम सिक्योरिटी की बात, समुद्री सुरक्षा की बात हम कर ही चुके हैं। तीसरा, शक्ति संतुलन की भी बात है कि कैसे जो साउथ ईस्ट एशिया है या पूरा का पूरा एशिया का महाद्वीप का ये जो हिस्सा है, समुद्री हिस्सा है खासकर, उसमें कैसे शक्ति संतुलन को स्थापित किया जाए, शक्ति संतुलन की स्थिति बनाई जाए, ये आपने न्यूज में भी देखा है। और जो बहुत हाईलाइट की गई है न्यूज में वो है बुलेटिन, देखा ना आपने, चलते हुए दिखाया जा रहा, खूब न्यूज आई है बुलेटिन पर। वैसे भी इसलिए भी आई है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है बुलेटिन का चलते हुए देखना। अब आप देखिए कि बुलेटिन को लेकर के जो बहस चल रही है वो दो तरह की चल रही है। एक पक्ष है जो इसे बहुत जरूरी मान रहा है कि बहुत बड़ी बात है, हमारे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरह से बात कही कि तेज प्रौद्योगिकी और तेज विकास, तेज गति, तो यानी कि हमारे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। लेकिन दूसरा पक्ष है जो ये भी कह रहा है कि हमारे यहां जो अभी ट्रेन चल रही हैं उनमें सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो यहां बहुत ज्यादा पूंजी लगाई जा रही है। तो ये एक डिबेट का पॉइंट बन गया बुलेट ट्रेन। तो एग्जाम के लिए आपको ये भी एक छोटा सा, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, कि क्या भारत में इस तरह की तीव्र प्रौद्योगिकी वाले बुलेट ट्रेन चलाए जाने चाहिए, इस पर आपको विचार करना होगा। अब आप इस पर विचार करके अपनी राय कायम कीजिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और जो सेकेंड पॉइंट है वो है खासकर आपके सुरक्षा को लेकर। तो मित्रों, अब ये जो 15 समझौते हुए हैं, इनमें से आप केवल उनको चुनिए, निकालिए जो इन दोनों से संबंधित हैं। जहां तक देखिए आर्थिक विकास की बात है, वो तो आर्थिक विकास तो मेन एजेंडा है ही। अब वो कुछ स्मार्ट सिटी में मदद करेंगे, कुछ और क्षेत्रों में भी सहयोग के समझौते हुए हैं, लेकिन उसको अब याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। आपको इसी पर केंद्रित होना पड़ेगा, राइट? मित्रों, आखिरी बात एक और वो ये कि जब आप इस तरह के टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे भारत जापान समझौता है ना, संबंध, तो आपको थोड़ी सी अपनी स्थिति को भी देखना होगा। अपनी स्थिति को देखने का मतलब है कि आप जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो किस ईयर के लिए कर रहे हैं। जैसे अगर अभी आप मेंस के लिए कर रहे हैं जो अक्टूबर में होना है, तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें कि आप नेक्स्ट ईयर के प्री में बैठेंगे और सेलेक्ट होकर के फिर मेंस देंगे, तब फिर इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सामान्य अवधारणा आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पृष्ठभूमि होगी आगे जब आप इसकी तैयारी करेंगे तो उसमें ये काम आ जाएगी। तो सामान्य तरीके से आप इसे पढ़िए, जानिए बस। लेकिन अगर आप और 2 साल बाद एग्जाम में बैठेंगे, तब एक बार पढ़ लीजिए और बस आगे निकल जाइए। जब आगे जब आप एग्जाम के करीब पहुंचेंगे, उस समय की जो घटनाएं होंगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। और मित्रों, जो मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड करता हूं, उस क्लिपिंग्स के साथ भी आपको इसी तरह का व्यवहार करना है कि आप कब एग्जाम में बैठ रहे हैं। हां, जहां तक यह है कि फिर आपको डेली ऑडियो सुनना है, डेली अखबार पढ़ने हैं, आपको डेली न्यूज सुननी है, वो आपको कंटिन्यू बनाए रखना है। मतलब उसमें आपको कोई लिबर्टी नहीं लेनी है कि मुझे तो 2 साल बाद एग्जाम देना है तब फिर मैं उस समय सुनना शुरू करूंगा, उस समय पढ़ना शुरू करूंगा। नॉट एट ऑल। ये सारी की सारी जो बैकग्राउंड है आपको स्ट्रांग बनाएगी, दूसरों की तुलना में आपको आगे ले जाएगी। बस ये कहे कि पढ़ने की जो डेप्थ होगी, जो सिंसियरिटी होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप कब एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो दोस्तों, ये भारत और जापान के बहाने मुझे परीक्षा की तैयारी के बारे में कुछ इस तरह की बातें करनी थी, क्योंकि मैं देख रहा था कि जो मेरे पास मेल आ रहे थे, उन मेल से मुझे महसूस हो रहा था कि स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के साइंस को लेकर के, आप कह लीजिए उसके तरीके को लेकर के थोड़े भ्रम में हैं। तो मुझे लगा कि उस भ्रम को मुझे अपनी तरफ से दूर करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। तो मित्रों, अब न्यूज से बस इतना ही। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है, मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। अब मैं आता हूं ईमेल पर। तो सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: विवेक धवन न्यू दिल्ली से, भुवनेश्वर गौतम, नवीन कुमार मिश्रा, हर्षिता गुप्ता कुंजपुर उत्तर प्रदेश से, रितिका अस्थाना, अपूर्वा विश्वकर्मा, बाबा गोवड़ा कर्नाटक से, आलोक कुमार सुधांशु, सिद्धार्थ साहू, इरफान सैफी सुल्तानपुर दोस्त उत्तर प्रदेश से, और विकास अरोरा न्यू दिल्ली से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं 2 दिनों के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, और ये 2 दिन आपके बहुत सुखद हों, इसकी शुभकामनाओं के साथ ही अब आप मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।